हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह जब सब लोग दिवाली की तैयारी में लगे थे, वहीं माधवी और राधिका गुस्से से अपने पतियों को घूर रही थीं। विहा ने जब से माधवी की बेइज्जती की थी, तब से माधवी के दिल में आग लग चुकी थी और वो किसी भी तरह इन शादीशुदा जोड़ों को परेशानी में डालना चाहती थी। माधवी ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए कहा, रूहान का पहला वाला गुस्सा तो बेकार चला गया और मुझे ही सुनना पड़ा, लेकिन इस बार का गुस्सा अनाही पर निकलेगा और आज शाम की पार्टी में रूहान को कैसे ड्रिंक करवाना है, ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को देती हूँ। रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, रूहान रात को ड्रिंक जरूर करेगा और उसके बाद वो अनाही पर गुस्सा भी करेगा। अनाही के पिता पहले से ही रूहान से नाराज हैं। इस बार अगर रूहान ने गड़बड़ की तो उनका तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता है। माधवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि इस बार का प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ है। कुछ भी हो जाए, चाहे अनाही अपना कितना भी दिमाग लगा ले, इस बार वो रूहान के गुस्से से नहीं बच पाएगी। रूहान और अनाही अपने कमरे में थे। रूहान काफी खुश नजर आ रहा था। उसने अनाही से कहा था कि दिवाली पर वे कपल ड्रेस पहनेंगे, इसलिए वो एक ही रंग की 3-4 ड्रेस लेकर आया था और अब अनाही को दिखा रहा था कि उसे कौन से रंग की साड़ी पहननी है। वो उसी रंग की ड्रेस पहनेगा। अनाही उसकी इस असीमित खुशी को देखकर हंस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कपल ड्रेस पहनने में ऐसा क्या खास है जिससे रूहान इतना खुश हो रहा है। रूहान ने अपने रूम की एक तरफ की वॉल को देखा, जिस पर वो तस्वीर लगी थी जो उसने और अनाही ने जंगल में खींची थी, और वो लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। दूसरी तरफ की वॉल पर अभी भी सिर्फ रूहान की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिसे देखकर रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैडम जी अब दिवाली पर जो हम तस्वीरें लेंगे उन सब को मैं इधर वाली साइड लगाऊंगा। अनाही जो अपने लिए झुमके ढूंढ रही थी, उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आपको आनंद भाई को ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो एक आर्किटेक्ट हैं, उन्हें डिज़ाइनिंग के बहुत काम मिलते हैं। जैसे ही वो डिज़ाइनिंग करके फ्री हों, आप ये डेकोरेशन वाला काम ले लेना, उनके सारे क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे, फिर आप सबकी वॉल्स को ऐसे ही खूबसूरत बनाना। रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मुझे सिर्फ अपने कमरे की दीवारों को खूबसूरत बनाना है, और वो भी सिर्फ आपकी तस्वीरों से, ना कि किसी और के कमरे को किसी और की तस्वीरों से, ये सब काम मुझे नहीं आता है। अनाही ने रूहान को दो झुमके दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है आप बताइए इनमें से कौन सा सुंदर है। रूहान ने जल्दी से उनमें से एक चुनते हुए कहा, ये वाला आपने तब पहना था ना जब आपने करवा चौथ का व्रत किया था, ये आप पे बहुत सुंदर लगता है। अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आपने देखा था उस दिन मैंने ये झुमके पहने थे। रूहान ने हैरानी से कहा, क्यों मुझे नहीं देखना चाहिए था क्या, आपको नहीं देखूंगा तो किसको देखूंगा। अनाही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि क्या आपने मुझे इतने गौर से देखा था कि आपको झुमके भी याद हैं कि मैंने कौन से झुमके पहने थे, क्योंकि ये तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैंने कौन से अवसर पर कौन से झुमके पहने थे, फिर आपको कैसे याद रह सकते हैं जबकि आपने तो एक दो बार ही देखा होगा, मैं तो मिरर में खुद को 100 बार देखा था उसके बाद भी मुझे याद नहीं है, अभी आपने बताया तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने इस रंग की साड़ी पहनी थी तो मैंने ये वाले झुमके ही पहने होंगे। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, इन सब का मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना याद है कि आपने ये वाला झुमका पहना था और ये आप पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बस इतना ही पता है। रूहान का वो मासूम सा चेहरा देखकर अनाही को उस पर प्यार आ रहा था। वो उसके पास आई और फिर उसके हाथ में पड़ी पर्पल रंग की कुर्ते पजामे वाली ड्रेस को देखते हुए बोली, आप ये वाली ड्रेस पहनना, मैं इस रंग की साड़ी पहनूंगी। ये सुनकर रूहान के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। वो कब से बस इसी बात का तो इंतज़ार कर रहा था कि अनाही उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट करे और वो जल्दी से तैयार होने जाए, क्योंकि अनाही पहले ही नहा चुकी थी लेकिन वो नहीं नहाया था। रूहान ने बाथरूम में जाने से पहले एक बार झुककर अनाही के माथे पर किस किया और फिर लगभग दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। वहीं उसके जाते ही अनाही ने आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान जी जैसे जैसे मैं रूहान जी को अच्छे से जान रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ, वो कितने अच्छे हैं, मैं तो किसी बात का ध्यान नहीं रखती हूँ और वो मुझे इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। वहीं वेदांत के कमरे में बेचारे वेदांत का बुरा हाल था। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने गाल को देख रहा था, जिस पर विहा की छोटी छोटी उंगलियों वाली मेहंदी पूरी तरीके से लग चुकी थी और तो और उस पर रंग भी उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वेदांत ने किसी से थप्पड़ खाया हो, क्योंकि विहा की सिर्फ उंगलियाँ ही उसके गाल पर छपी थीं। विहा उसे देख देख कर हंस रही थी। उसने अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक करते हुए कहा, आपका पता नहीं लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, देखो तभी तो एक बार हाथ लगाते ही कितना गहरा रंग आया है आपके गाल पर। वेदांत ने गुस्से से विहा को घूरते हुए कहा, टोमेटो तुम कितनी शैतान हो, तुम्हें पता भी है अब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, सबको लगेगा कि मैंने तुम्हारे हाथों से थप्पड़ खाया है। विहा उसके पास आई और अगले ही पल वेदांत के इस गाल पर किस करते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम आप सबको क्लियर कर देंगे कि मेरी बीवी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा है, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। वेदांत ने आंखें बड़ी करते हुए विहा को देखा और फिर गुस्से में बोला, टोमेटो तुम कुछ ज्यादा तंग नहीं कर रही हो मुझे। विहा ने दो बार नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, मैं तो आपको बहुत कम तंग कर रही हूँ, क्योंकि असली में तो तब तंग करूंगी जब मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद देखना हम दोनों मिलकर आपका जीना हराम कर देंगे। वेदांत ने रोनी सूरत बना ली और फिर एक झटके से विहा को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, ठीक है कर लेना जीना हराम, अब की भी तो मैं तुम्हारे लिए ही रहा हूँ, तो इसे हराम भी सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इतना बोलकर उसने फिर उसे बेड पर बिठाया और फिर उसके पैरों पर जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाने लगा। उसके पास एक पूरी लिस्ट थी कि आज उसे विहा को कैसे तैयार करना है, क्योंकि उसे ढंग से तैयार होना नहीं आता था। उसने इस काम के लिए जूली से मदद ली थी। बेचारी जूली को ऑफिस के साथ साथ वेदांत का ये काम भी करना पड़ रहा था। विहा ने गौर से वेदांत को देखा और फिर धीरे से कहा, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई उसके बाद देखना, मैं आप सबके सामने बताऊंगी कि मेरे पति को नेल पॉलिश तक नहीं लगानी आती, वो क्या अच्छा पति बनेगा। वेदांत ने गुस्से में कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो टोमेटो, ये काम बहुत ही ज्यादा बारीकी का है, अगर थोड़ी सी भी हिल गई तो अपने आप ही खराब हो जाएगी, फिर मुझे दोष मत देना। विहा ने मुंह बनाया और फिर ध्यान से वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने नेल पॉलिश लगाने के बाद उसके पैरों में पायल पहनाई और उसके पैर इतने प्यारे लग रहे थे कि वेदांत का गुस्सा पल भर में दूर हो गया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने झुकते हुए विहा के पैरों पर किस कर लिया, जिसके साथ ही विहा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे आपको आशीर्वाद लेना है तो पैर छू कर लीजिए, ऐसे बेशरम मत बनिए, कम से कम आस्था वाली चीजों में तो मत ही बनिए, उसके अलावा तो आप बेशरम हैं ही, वो तो मुझे पता है।
वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर विहा के पास जाकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, तुमसे तो कम ही बेशर्म हूं मैं टोमेटो, चलो मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। इतना बोलकर वेदांत अब विहा के बाल बनाने लगा। विहा को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी और उसके गाल शर्म से लाल थे और वो वेदांत की टोमेटो बन चुकी थी।